सांस्कृतिक प्रगति, ऊपर बताए गए विलास और साक्षरता, शिक्षा, संस्कृति आदि के विकास में परस्पर क्या संबंध है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। सामान्यतः पूंजीवादी पद्धतियों का यह तकाजा है कि जो भी व्यापार में लगे हों वे सभी पढ़ लिख लेते हों। इसके साथ ही व्यावसायिक वित्तीय व्यवहार की बढ़ती हुई पेचीदगियों के कारण इस बात की आवश्यकता पड़ी कि लोग लेखा प्रणाली के अधिक तर्कसंगत और कुशल तरीकों को अपनाएं। इस प्रकार द्विअंकन खाता प्रणाली का आविर्भाव हुआ, जो लेखा प्रणाली की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सीधा ही लाभ या हानि को दर्शाता है। इस प्रणाली से अधिक सावधानी पूर्वक व्यापार में संभावित खतरों का अनुमान लगाया जा सकता है। 14वीं शताब्दी के मध्य तक सार्वजनिक शिक्षा के बारे में चर्च का एकाधिकार बड़ी तेजी से समाप्त हो रहा था। इसके मुख्यतः दो कारण थे। पहला यह कि चर्च शिक्षा की बढ़ती मांग को स्वयं पूरा करने में समर्थ नहीं था। दूसरा कारण, जो कि अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है, यह था कि जो लोग जिस ढंग की शिक्षा चाहते थे, चर्च वैसी शिक्षा नहीं दे सकता था। उदाहरण के लिए, इटली के अधिकांश राज्यों में माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे जिससे वे व्यापारिक सौदों और ऋणों आदि का हिसाब किताब रख सकें, या कम से कम किसी कारीगर की दुकान में काम कर सकें। फिर भी इतना तय है कि इटली में सामान्य शिक्षण की एक मजबूत परंपरा थी। 1338 में फ्लोरेंस में 12-15% स्कूल जाने वाले विद्यार्थी केवल सामान्य जोड़ी जोड़ बाकी तथा अंक गणित ही पढ़ते थे। 1332 में वीनस में यह आज्ञप्ति जारी की गई कि जब तक कोई व्यक्ति अच्छी तरह लिख पढ़ न सके तब तक उसे जज नहीं बनाया जाएगा। परंतु इस प्रकार का मानदंड सभी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता था। साक्षरता का स्वरूप उत्तर और मध्य यूरोप के राज्यों में अत्यधिक त्रुटिपूर्ण था। उदाहरण के लिए, फ्रांस के संदर्भ में यह संभव है कि देश के आर पार सट माइकल की खाड़ी से लेकर जेनेवा तक दक्षिण पूर्व में एक ऐसी रेखा खींची जा सके जो दक्षिण के अत्यधिक ऊंची साक्षरता वाले क्षेत्र को उत्तर के अल्प विकसित क्षेत्र से अलग कर सके। साक्षरता और शिक्षा में मध्यकालीन विकास की दृष्टि से स्पष्टतः सबसे ज्यादा हतोत्साहित करने वाली बात यह है कि अधिकांश मध्यकालीन राजाओं की नज़र में इन चीज़ों का मूल्य एक प्रकार से सतही था। इनमें से अनेक इटली के राजाओं सहित ने अच्छे पुस्तकालय बनाए हुए थे, फिर भी इनमें से अधिकांश ने स्वेच्छा से पढ़ना लिखना नहीं सीखा। स्पष्ट ही इसका कारण यह था कि न तो इस ओर उनका रुझान था और न उन्होंने इसकी जरूरत ही महसूस की। हम किसी भी मानदंड से क्यों न देखें, मध्यकालीन कला कौशल प्रेरणादायी प्रतीत होते हैं, बशर्ते कि ऐसा न हो कि हमें आगामी विकास के आगे छोटे लगने लगे। गोथिक मेहराब की कला मध्यकालीन कला का सुंदरतम नमूना है, जिसमें सरल सौंदर्य और आकर्षण है। इसमें कोड़ों और मेहराबों को परिपूर्ण रूप प्रदान किया गया है। इस काल के चित्रकार भी कम प्रतिभाशाली या कम कल्पनाशील नहीं थे, फिर भी जैसा कि हम देखेंगे 15वीं शताब्दी और इसके बाद के कलाकार और मूर्तिकार अपने ठीक पहले के पूर्ववर्तियों से अनेक महत्वपूर्ण मामलों में भिन्न हैं। सबसे ज़्यादा परिवर्तन कलाकार के अपने कार्य के स्वरूप के बदले उसकी सामाजिक स्थिति के संदर्भ में हुआ। 10वीं और 12वीं शताब्दी का मध्यकालीन कलाकार सामान्यतः गिल्ड या निगम का सदस्य हुआ करता था, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्तिवादिता या आत्माभिव्यक्ति के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। दूसरी ओर पुनर्जागरण का महत्व इस बात में निहित है कि उसमें कला को अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ और सामाजिक रूप दिया गया। मध्यकाल में एक स्वतंत्र कला के रूप में मूर्ति निर्माण का प्रायः सर्वथा अभाव था। उस समय जो भी कुछ था उसे हम चर्चों या गिरजाघरों की साज सज्जा और अलंकारिक डिजाइनों में ही देख सकते थे। इसी प्रकार चित्रकला में भी कलाकार के विषय सीमित थे और इनका संबंध देवदूतों मरियम तथा ईसा के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न चित्रों से था। बहुत हद तक इसका कारण यह था कि चर्च कला का सबसे बड़ा संरक्षक था। प्रकृति के यथावत चित्रण मानव शरीर के विभिन्न उतार चढ़ावों को चित्रित करने को सदा संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता था। कोई भी कलाकार जो अपने धंधे में सफल होना चाहता था उसे पोप के या पादरियों के निर्देश का पालन करना होता था। पुनर्जागरण ने, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इस निराशाजनक सीमा को समाप्त कर दिया। कला के बारे में जो कुछ कहा गया है प्रायः वे बातें ज्ञान विज्ञान के विषय के बारे में भी कही जा सकती हैं। सामान्य धारणा के विरुद्ध मध्यकाल में विज्ञान अज्ञात विषय नहीं था। चिकित्सा, किलों का डिजाइन, आवश्यक धातुओं का उत्खनन, बारूद का निर्माण तथा अन्य अनेक क्रियाकलाप कुछ सुनिश्चित सिद्धांतों के आधार पर ही संभव थे। विशुद्ध चिकित्सा शास्त्र में रुचि के कारण सालेनो, बोलोन, पाविया या पादुआ विश्वविद्यालयों में सैकड़ों छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर भी उस समय अनेक बाधाएं भी थीं। रोजर बेकन और पेरिस में कुछ अन्य लोगों के प्रयत्न के बावजूद विज्ञान को एक अमूर्त कल्पना समझा जाता था या फिर वह अस्पष्ट तथा बेहुदे अंधविश्वासों से प्रभावित था। इस काल के कुछ वैज्ञानिक जो विचारक भी थे, वस्तुओं के भौतिक गुणों का पता लगाने के बजाय उनके मूल रूप की खोज में निमग्न थे। इस मनोवृत्ति को एक हद तक अरस्तु की भौतिकी से बल मिला, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं को उसमें निहित गुणों के अनुमान के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। आधुनिक विज्ञान की स्थापना के लिए यह जरूरी था कि पहले अरस्तु की गुणात्मक भौतिकी का परित्याग किया जाए। दूसरी ओर मध्यकालीन स्कूलों में छात्र प्रायः अरबी एवं यूनानी परंपरा से प्राप्त कुछ विचित्र धारणाओं से भटक जाते थे। इनमें एक धारणा यह थी कि रोगों का कारण शरीर में विद्यमान पित्तों में काफी असंतुलन हो जाना है। मध्यकालीन यूरोप के सांस्कृतिक आयामों से संबंधित कोई भी चर्चा उस समय तक पूरी नहीं मानी जा सकती जब तक मध्यकालीन धर्म पर कुछ विचार न किया जाए। इसके अलावा मसीही धर्म के अंतर्गत जो विवाद अब तक तहलका मचा रहे थे, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी के बिना पुनर्जागरण के भौतिक पक्ष को समझना असंभव होगा। मोटे तौर पर ये विवाद तीन प्रकार के थे। पहला, दैनिक जीवन से संबंध मामलों में विभिन्न प्राधिकारियों के परस्पर विरोधी निर्णयों में समन्वय की समस्या। इस समस्या का समाधान पेरिस में पीटर एबेलार्ड 1079 से 1142 और पीटर लोम्बार्ड 1100 से 1164 जैसे धर्मवेत्ताओं ने निकाला। दूसरी समस्या पहले की अपेक्षा ज़्यादा पेचीदा थी और वह यह कि दिव्य सत्ता की प्रकाशना में विश्वास और यूनानी दर्शन के अधिकाधिक परिचय से प्रेरित सहज तर्क बुद्धि के बीच जो अंतर की खाई है उसे कैसे पाटा जाए। पुराने ऑगस्टाइन सूत्र, मैं विश्वास के उद्देश्य से जानना नहीं चाहता वरन जानने के उद्देश्य से विश्वास करता हूँ, के द्वारा दोनों को एक दूसरे से एकदम अलग रखने का प्रयास किया गया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में टॉमस एक्विनास 1225 से 74 ने इस द्वैधता को दर्शन और धर्म के समन्वय द्वारा हल करने का प्रयास किया। एक्विनास के अनुसार तर्क और विश्वास समानांतर मार्ग हैं जो सत्य की ओर ले जाता है और यह सत्य हर हालत में अविभाज्य है और यह परमात्मा का कार्य है। इसके बाद से यह निष्कर्ष निकालना संभव हो सका कि दिव्य सत्ता के अंशों परमात्मा की सत्ता और आत्मा की अमरता को सहज तर्क बुद्धि द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य अंशों जैसे ईसा का अवतार या प्रायश्चित के विचार को प्रकाशना द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ तर्क बुद्धि को जो छूट दी गई उसने आगे चलकर बड़े महत्वपूर्ण रूप में आगामी विकास को प्रभावित किया। तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विवाद तथा कथित यथार्थवादियों और नामवादियों के बीच था। प्लेटो तथा नव प्लेटोवादियों से प्रभावित यथार्थवादियों का यह विश्वास था कि पूर्ण यथार्थता केवल सामान्य संकल्पनाओं या विचारों में देखी जा सकती है। उन सामान्य तत्वों में जो व्यक्ति की सत्ता से पहले ही अस्तित्व में थे, इस सिद्धांत के विरोधी नामवादी थे जिनके अनुसार केवल व्यक्ति की सत्ता ही यथार्थ है और सामान्य तत्व केवल विभिन्न वस्तुओं का आकारहीन समूहीकरण भर है। पेरिस में जो उस समय अधिकांश धर्मशास्त्री वाद विवादों का मुख्य केंद्र था, अधिकांश विद्वानों का यथार्थवाद की ओर झुकाव था, क्योंकि यथार्थ के किसी रूप द्वारा ही तर्कबुद्धि अति प्राकृतिक चीज़ों को जान समझ सकती है और केवल इसी रूप में धार्मिक विश्वासों के विधान के बारे में तर्कसंगत प्रमाण प्रस्तुत किया जा सकता है। पुनर्जागरण के एकदम पहले 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में डंज स्कोटस मृत्यु सन 1308 और विलियम ऑफ ओकम मृत्यु सन 1349 के प्रभाव में नामवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। मानव मन केवल विशिष्ट वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को ही समझ सकता है, यह विश्वास प्रकट करते हुए ओकम ने इस बात की संभावना को अस्वीकार कर दिया कि धार्मिक सत्यों को तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। यद्यपि उदार तर्क बुद्धिवादियों ने नामवादियों की विजय को एक बुरा संकेत कहा था, परंतु संभवतः इसका पुनर्जागरण के मूल्यों और व्यवहार पर एक विरोधाभासी प्रभाव पड़ा। निस्संदेह एक ओर उसने इस समन्वय में रुकावट डाली कि धर्म तर्क के द्वारा प्रभावित करता है और इस प्रकार ईसाइयों में पुनः धार्मिक आस्था का संचार किया। साथ ही उसने स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद पर बल देने की दिशा में कदम बढ़ाकर महत्वपूर्ण कार्य किया। इस दृष्टि से इसका दूरगामी परिणाम यह रहा कि इसमें ईसाइयत को प्रोटेस्टेंट सुधार की दिशा में प्रवृत्त किया। इन वाद विवादों का स्पष्ट परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, हम सहज ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसने स्त्री पुरुषों की आधुनिकतावाद की पहेली पर ला खड़ा किया। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मध्यकालीन समाज में धर्म की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समाप्त हो गई थी या धर्म इस काल में व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित नहीं करता था। फिर भी कुछ लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा था। यद्यपि इन प्रयासों में बाधाएं आती रहीं, फिर भी लोग धर्म को अधिक तर्कसंगत और स्वीकार बनाने की दिशा में प्रयास करते ही रहे। अब मृत्यु के बाद जीवन के प्रति कोई सनक या समूह शेष नहीं रह गया था। इस बारे में निष्ठा के साथ प्रयत्न किए गए कि दैनिक जीवन से संबंध मामलों पर अधिक ध्यान दिया जाए। इस प्रकार यद्यपि ईसाइयत के प्रति विश्वास की आना भावना अब भी काफ़ी मात्रा में बची हुई थी, फिर भी कुछ ने भगवान के प्रति श्रद्धा और पादरी के प्रति आदर भाव में अंतर करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि दांते की प्रारंभिक कृतियों में जहाँ चर्च और ईसाई धर्म के प्रति श्रद्धा की भावना है, वहाँ पोप और पादरियों के प्रति उस समय उभरती हुई निंदा की भावना को व्यक्त किया गया है।